पृथ्वी की आंखें छोटी हो गईं और उसने कहा, भाई ने? वो आदमी बोला, हाँ, तुम्हारे भाई ने हमारे एक आदमी को जान से मार दिया था, इसीलिए अब हम तुम्हें जान से मारेंगे। पृथ्वी हंसने लगा और बोला, तो तुम्हें ऐसा लगता है कि तुम लोग ये काम कर लोगे? मेरे भाई ने तुम्हारे एक आदमी को जान से मार दिया था और तुम उसका बदला लेने के लिए मुझे जान से मार रहे हो। कहाँ से आते हैं ऐसे थर्ड क्लास आइडिया? मुझे लगा था तुम में से कोई तो समझदार होगा, लेकिन मैं गलत था। तुम सबके सब बेवकूफ़ निकले। तुम में से किसी ने भी इतना सा दिमाग नहीं लगाया। जब मेरा भाई इतना खतरनाक हो सकता है तो मैं कितना खतरनाक हूँ? तभी वो आदमी आगे आते हुए बोला, अभी बताते हम कितना खतरनाक है। वो आदमी अपनी तलवार से पृथ्वी पर वार करने वाला था कि तभी पृथ्वी ने उस आदमी के निचले हिस्से पर लात मार दी और उसके हाथ से तलवार छूटकर नीचे जमीन पर गिर गई। पृथ्वी जल्दी से उसे उठा लिया। तभी वहां पर खड़े सभी आदमी उन पर हमला करने लगे, लेकिन पृथ्वी ने उन सबका डटकर सामना किया। उनमें से एक आदमी जाह्नवी की तरफ बढ़ रहा था, लेकिन पृथ्वी ने उसे बीच में ही रोक दिया और उसके हाथ पर वार करके उसे वहीं पर गिरा दिया। जाह्नवी तो ये नज़ारा देखकर इतनी डर गई थी कि उसे कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। हालांकि वो इस सीन को एंजॉय भी बहुत कर रही थी, क्योंकि उसे एक्शन फिल्मों का शौक था और यहाँ पर तो सामने ही एक्शन चल रहा है। तभी जाह्नवी ने देखा एक आदमी पीछे से पृथ्वी पर वार करने वाला था। जाह्नवी ने अपने आसपास देखा तो उसे एक डंडे की जैसी लकड़ी की टहनी मिली। उसने उस मोटी टहनी को उठाया और धीरे से उस आदमी के सर पर वार करने के लिए जा रही थी। तभी एक दूसरा आदमी उस आदमी से टकरा गया और वे दोनों जमीन पर गिर गए। लेकिन जो डंडा जाह्नवी उस आदमी को मारने वाली थी वो सीधे पृथ्वी के सर पर जाकर लगा। पृथ्वी ने अपना सर पकड़कर गुस्से में जाह्नवी को देखा तो जाह्नवी जल्दी से डंडा छोड़ दिया और अपने दोनों कान पकड़ते हुए बोली, सॉरी, मैं तो बस मदद कर रही हूँ। तभी एक आदमी जाह्नवी पर हमला करने वाला था। पृथ्वी ने अपनी तलवार से उसके तलवार को रोकते हुए जाह्नवी को गुस्से में देखते हुए कहा, अगर मदद ही करनी है तो बस इतना करो कि एक जगह जाकर छुप जाओ। पृथ्वी फिर उन लोगों से लड़ने में उलझ गया था। जाह्नवी इधर उधर देखी तभी उसे झाड़ियां नजर आईं। वो जल्दी से झाड़ियों के पास गई और वहां पर छुप गई। पृथ्वी ने अपनी मार्शल आर्ट स्किल से सबको मार गिराया था। पृथ्वी को भी चोट लगी थी, लेकिन फिर भी उसने हिम्मत नहीं हारी और सबके साथ मुकाबला किया। एक बार सबका काम तमाम करने के बाद पृथ्वी जाह्नवी के पीछे आया और बोला, चलो निकलो यहाँ से, हमें बाहर निकलना है। जाह्नवी हैरानी से झाड़ियों से खड़ी हुई और बोली, तुमने मुझे ढूंढा कैसे? मैं तो यहाँ पर छुपी हुई थी। पृथ्वी की आंखें छोटी हो गईं और उसने जाह्नवी को देखकर कहा, ये झाड़ियाँ ठीक से 3 फीट की भी नहीं है, तुम्हें छुपने के लिए कोई और बेहतर जगह नहीं मिली क्या? जाह्नवी ने मुंह बनाते हुए कहा, अब मुझे जो मिला मैं वहीं पर छुप गई। अच्छा ठीक है, अब अगर हमें यहाँ से निकलना ही है तो तुम थोड़ा आगे जाओ, मुझे थोड़ी देर यहीं पर रहना है। पृथ्वी ने खींचते हुए कहा, ये जंगल है, गार्डन नहीं, जो तुम्हें यहाँ पर रहकर नजारों के मजे लेने हैं, चुपचाप चलो यहाँ से। लेकिन जाह्नवी ने भी परेशान होते हुए कहा, नहीं चल सकती, तुम जाओ ना थोड़ा आगे, मुझे लैटरिन आ रही है। कौन सी रिंग आ रही है? पृथ्वी ने मुंह बनाते हुए जाह्नवी को देखकर कहा। जाह्नवी ने फ्रस्ट्रेटेड होते हुए कहा, तुम बड़े लोग लैटरिन को क्या कहते हो? अरे यार, वो जो खापी को निकाल देते हैं, जो सुबह सुबह करते हैं। अरे देश के बहुत सारे लोग रेल की पटरी पर करते हैं, लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए, फिर भी लोग करते हैं। पृथ्वी ने नाक से कोड़ते हुए कहा, पॉटी? जाह्नवी ने अपना सर पीटते हुए मन में कहा, अंग्रेज चले गए, अंग्रेजी छोड़ गए। उसके बाद उसने पृथ्वी को देखकर कहा, हाँ हाँ यही करना है, तो तुम आगे जाओ। पृथ्वी ने अपना मुंह बिचकाया और वहां से आगे चल दिया। अगली सुबह आस्तिक की जब नींद खुली तो वो अपने बिस्तर पर था, लेकिन वो घर कब आया और वो अपने बिस्तर पर कैसे पहुंच गया? उसने देखा उसके कपड़े बदले जा चुके हैं और उसके जूते भी उतार दिए हैं। आस्तिक हैरानी से अपने आप को देखकर बोला, ये सब किसने किया? तभी उसकी नजर कमरे के कोने में काम कर रही अरुणिमा पर गई और उसे उसके सवाल के जवाब मिल गए। जाहिर तौर पर ये सब काम अरुणिमा ने किए होंगे। हैंगओवर की वजह से आस्तिक का सर दर्द हो रहा था। उसने बगल में देखा तो उसकी ब्लैक टी टेबल पर तैयार रखी हुई थी और अरुणिमा उसके पैंट और शर्ट पर प्रेस कर रही थी। आस्तिक ने अपनी ब्लैक कॉफी उठाई और उसे पीते हुए अरुणिमा को देखा। जब से उसकी शादी हुई है तब से लेकर अब तक उसने अरुणिमा को अपने हाथों की कठपुतली बना दिया था। वो जो उसके हिसाब से चलती थी, उसके हिसाब से काम करती थी, यहाँ तक कि उसके इशारे पर नाचती भी थी। आस्तिक ने देखा अरुणिमा अपने काम में इतनी मग्न थी कि उसने अभी तक इस बात को नोटिस नहीं किया कि आस्तिक उठ चुकी है। तभी आस्तिक के कानों में अरुणिमा के गुनगुनाने की आवाज आई। वो किसी गाने की धुन को गुनगुनाते हुए आस्तिक की शर्ट पर प्रेस कर रही थी। उसे इस तरीके से गुनगुनाते देख आस्तिक के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ गई। अरुणिमा ने गुलाबी रंग की साड़ी पहनी हुई थी जिसमें उसका गोरा रंग निखर कर आ रहा था। हाँ, उस लंग में आस्तिक के दिए हुए दाग भी थे, पर आस्तिक को सिर्फ उसकी सुंदरता नजर आ रही थी। आस्तिक ने अपनी नजरों से अरुणिमा को घूर कर देखते हुए कहा, तुम सच में सुंदर हो। तभी आस्तिक के दिमाग में उसके बुरे विचारों ने फिर से जन्म ले लिया, जिसने आस्तिक से कहा, पागल मत बन, ये लड़की एक छलावा है, इसके बहकावे में मत आ, इसका काम ही है लोगों को अपनी जाल में फंसने का, ये भी वैसी ही है जैसी इसकी माँ है। अपने दिमाग के इस बुरे विचार के साथ ही आस्तिक के चेहरे की मुस्कान गायब हो गई और वो घूरते हुए अरुणिमा को देखने लगा।